تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 27 سے. سلسلہ کلام اسی واقعے سے ہے کہ خدہت نے ملکہ سبا کے بارے میں کچھ خبر دی. اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو نے سچ کہا یا تو نے غلط بیانی کی. یعنی خدہت کی بات کو سن کر ایسے ہی نہیں مان لیا، اندھا اعتماد اچھا نہیں ہوتا. یہاں سے عمل کی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی انسان کے پاس کوئی خبر آئے، کوئی بات کہے کوئی، تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر کسی تحقیق کے اگر آپ مان لیتے ہیں تو بعض دفعہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ آج جو سچی بات کہہ رہا ہے کل جھوٹی بات بھی کہہ دے گا، یہ سوچ کر کہ آپ نے تو پوچھنا ہی نہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کی کوئی ماسی ہے نا، برتن دھوتی ہے، کام کرتی ہے، آپ کہتے ہیں فلاں گلاس نہیں مل رہا، وہ کہتے باجی ٹوٹ گیا تھا، تو آپ کہیں دکھائیں کدھر تھا، اس کی کرچیاں تو کہیں نہ کہیں ہوں گی نا. جب آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کو خوب پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹوٹا تھا یا چوری ہوا ہے. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے لوگوں کے ایمان کا یا لوگوں کے حال کا پتہ چل جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پورا ٹرسٹ تھا، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم ضرور دیکھیں گے. یہاں ایک اور بات عمل کی ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بعض لوگ بہت ہی مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ نہیں جی ہمارے بارے میں کیوں پوچھا، ہم پہ شک کیا. اور بعض دفعہ شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا کے دکھا دیتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم پہ تو پھر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، پھر ہم تو یہ کام کریں گے ہی نہیں. بعض گھر کے ملازم واقعی اس حد تک اپنے آپ کے بارے میں کانشیس ہونے لگتے ہیں. تو اس پہ بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ پہ شک نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے، جیسے ایک مثال ذہن میں آئی کہ بعض بچے، ماں باپ ذرا ان کے بارے میں پوچھیں، اچھا جی آپ کیا دیکھ رہے تھے کمپیوٹر پہ، یا دکھانا ذرا مجھے کمپیوٹر. اب اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ، آپ ایک دو پیچھے کر کے دیکھیں کیا دیکھ رہے تھے، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے بیٹا آپ پہ تو ٹرسٹ ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن ایسے ہی میں نے کہا ذرا دیکھوں. صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہی ہوں کہ دوسرے کو یہ یقین دلا دینا چاہیے کہ آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کہ آپ کو ایک اچھا بچہ بنانا چاہتی ہوں، میں آپ کی ماں ہوں، تو آپ جو کام مجھے آپ سے لگ رہا ہے میں کسی میں بھی نہیں یہ کام دیکھنا چاہتی، تو لہٰذا اگر میں دیکھ لوں تو برا نہ مانیں. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کا جب شروع سے تذکیہ کر دیا جائے تو وہ ماں باپ کی پھر اس قسم کی باتوں کو برا نہیں مناتے. لیکن افسوس کی بات کیا کہ آج کے دور میں تو ہر بندے کو اتنا سیلف کانشیس کر دیا گیا ہے کہ ماں باپ بھی اگر بچوں سے تھوڑی سی بات زیادہ کر لے تو بعض دفعہ بچے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ مائنڈ کرنے لگتے ہیں. بہرحال پوچھنا تو چاہیے. آگے فرمائے، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، لے جاؤ میرا یہ خط یا مکتوب، میرا لکھا ہوا، اور پہنچا دے ان کی طرح، پھر ہٹ کر کھڑا ہو جا ان سے اور دیکھ کیا. فانظر ماذا يرجعون، وہ کیا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں یا وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی سمجھدار تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روپیہ، پیسہ، مال یا عہدہ بندے کی مت نہیں مار دیتا ہر وقت، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے آزمانا چاہا. ایک تو یہ تھا کہ اس بات کا نوٹس ہی نہ لیتے. یہ بہت قابل غور نقطہ ہے جو ابھی بولنے لگی ہوں، کہ ایک بندہ بڑی اہم خبر کر کے لاتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو کوئی اہم ہی نہیں سمجھتے، نوٹس نہیں لیتے. مثلا ہو سکتا ہے آپ کا بچہ گھر میں آئے تو آپ کو کوئی بڑی انیوژل بات بتائے، کیا اسکول میں یہ ہوا تھا یا آج ہمارے کام پہ یہ ہوا تھا. غور کریں، ضرور سوچیں، کسی کی بات کو جانے نہ دیں، کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو بڑا بناؤ. لیکن بعض دفعہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں پینڈنگ ہوتا ہے، ہر چیز کو پینڈنگ کر دو، پیچھے ڈال دو، تو وہ نوٹس نہیں لیتے. تو بالکل پھر کینسر کا مرض سمجھ لیں کہ آج آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو کل وہ ان ریکیوریبل قسم کا مرض بن چکا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانے نہیں دیا. پھر ایک اور اس میں سے عمل کا نقطہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان ایک بادشاہ اور نبی تھے، جو بات سنی وہ ایک عورت کی تھی اور وہ بھی ملکہ تھی. کہتے چھوڑو ہمیں، کیا ہمارے کام سے کام رکھیں، اپنے سے رکھیں، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، مائنڈ یور بزنس. نہیں، یہاں سے ایک سچے مومن کا کردار بھی پتہ چلتا ہے. ہم کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں یا ہمیں کسی کے بارے میں غلط بات پتہ چلے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آرام سے بیٹھیں. اصل میں تو یہ دائی بن کے بھیج رہے ہیں اس طرف کہ دیکھتے ہیں اچھا سورج کو سجدہ کرتی ہے، اوہو یہ تو بڑی بری بات ہے. نہ وہ متاثر ہوئے اوتیت من کلی شعین سے، ना मुतासिर हुए अरशो नजीम से, ना ये कहा कि जरा उसकी सल्तनत पे मैं भी अपने हाथ बढ़ाऊं और मैं अपनी सल्तनत में उनको डाल दूं। उनको गम ये लग गया कि एक औरत है और यसजुदून अलैशम्स मिन दूनिल्लाह, वो भी और उसकी कौम भी। ये थी वो चीज़ जो बंदे को हरकत मिलाती है। यहाँ बहुत खूबसूरत बात है, अगर हम अपने अमल के लिए लिखें कि आप अपने नफ़े के हसूल के लिए जब मर्जी पेंडिंग करें काम, आपको आज काम करना है, आपको कोई फ़ायदा मिलना है ना करें, कल कर लें, परसों कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ आपको हिदायत का मामला मिले, जहाँ किसी एक बंदे को आपके एक एक्शन से हिदायत मिल जाए, उसमें देर ना करें। बस दफ़ा पेंडिंग कर कर के हम कितनों को हिदायत से दूर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी नहीं फिर कर लेंगे, एक दिन लेट करके हो सकता है उस एक दिन में किसी को हिदायत मिलनी हो। हमारे पास खैर होती है, हमारे पास नेमत होती है, हम उसको दूर कर देते हैं, अपने से पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं छोड़ो, चलो फिर कर लेंगे, अभी वक्त नहीं। दिल में ये दर्द पैदा करें कि अगर उससे पहले कोई मर गया। हम तो सिर्फ फैसला करने में इतना देर लगाते हैं, फिर उस पर अमल दरामद में और देर लगाते हैं, फिर उसके असबाब जमा करने में देर लगाते हैं। मेरे दिन में ना चाहते हुए भी इस वक्त दावा सीरीज़ का मामला आ गया, जस्ट अभी अल्लाह ने दिल में डाला। हिदायत का पैगाम मौजूद है, चीज़ मौजूद है, किसी की ज़िंदगी मौत का मामला हो सकता है। हम अभी उसके लिए प्लानिंग करेंगे, हम सोचेंगे लोग आएंगे, अच्छा अब कवर आएंगे, अच्छा अभी बॉक्स आएगा, तो वो तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। सिर्फ एक मौके की मुनासिब से ये बात कर रही हूँ। आपके पास कभी कोई चीज़ हो हिदायत की, यकीन करें देर ना करें, नहीं पता किसको क्या फ़ायदा होगा। कल रिसेंटली भी मुझे इतनी ज़्यादा शिद्दत से महसूस हुई कि अगर शायद मेरे पास 5-10 मिनट भी होते तो मैं आपको फ़ोन करती फरहाना कि मुझे सीडीज़ दे जाए। एन वही मौका बना था कि जिस वक्त वो इसाले सवाब की सीडी, एक जिसको कहते हैं ना कि लोहा नरम है तो उसके ऊपर ज़र्ब लगाने की कैफियत थी, लेकिन मेरे पास एक याद सीडी थी, मैंने पकड़ा दी वो जो थी। तो ये मौके होते हैं हमारी ज़िंदगी के, बस मिस हो गई दोबारा मिल जाएगी, ट्रेन मिस हो गई दोबारा मिल जाएगी, आप सेल में चीज़ नहीं ले सके बाद में मिल जाएंगे। शौक़ से हम पीछे रखें, लेकिन जहां बात किसी बंदे की हिदायत की हो तो फौरन जल्दी करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अमल से हमें ये चीज़ मिल गई, इज़हब फौरन उठो, भी किताब ही हाजा, ये मेरा ख़त लेके जाओ। अब ये कौन सी किताब थी, कोई बुक्स पकड़ाई नहीं, किताब यहाँ मकतूब के मानों में ख़त को कहते हैं, और लिख के दिया होगा उन्होंने, खुद लिखा। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है इसमें कि उन्होंने दावत के लिए ख़त लिखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी किसी को लिखा? आप देखिए कि सीरत तो थोड़ी थोड़ी टच हो ही गई है ना कुरान के साथ साथ। सन 6 हिजरी तक तो जंगों में लगे रहे, 6 हिजरी में सुलह उदैबिया के मौके पे कहा कि अब भी 10 साल तक नहीं लड़ेंगे हम आपस में, अच्छा करो साइन जल्दी से किए, अब सो जाते जाके कि शुक्र है अब 10 साल तो कोई जंग नहीं। फौरन वापस आए उदैबिया से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती खतूत लिखने शुरू कर दिए, एक एक को लिखा, अपने हाथों से लिखा। फिर उस वक्त पहली दफ़ा मोहर बनवाई, क्योंकि उस दौर में मोहर के बग़ैर बादशाह ख़त कबूल नहीं करते थे, जैसे आज के दौर में आप कह लें ऑफिशियल लेटर होने की अलामत थी। फिर आपने वो अल्लाह रसूल और मोहम्मद वाली स्टैम्प बनाई, उसी की अंगूठी बनाई, वही आपके स्टैम्प के तौर पर ख़त पे लगती थी और आप लेके गए। भी किताब ही हाजा फल की ही इलेहिम, फिर डालो उनकी तरफ। यहाँ देखिए इलेहिम आया जमा, इलाही हाँ ना चाहिए था ना, एक औरत थी तो इलाही हिम जमा में क्यों आ गया? इसकी दो बातें, एक तो बात कहते हैं कि वही बात जो पीछे चल रही है कि वो भी एक मलका थी, इज्जत के लिए जमा का लफ्ज़ बोला गया। दूसरा ये कि पैगाम सिर्फ उस औरत को नहीं देना बल्कि यसजुदून, वो सारे भी तो सजदा कर रहे थे, दरबारी भी तो थे, तो सबको ये पैगाम दे के आओ, क्योंकि उस ख़त में दावत थी, तबलीग थी। और देखो ख़त देकर अब वहाँ सर पर ना खड़े हो जाना, ثم تولى عليهم, फिर थोड़ा सा पीछे हट जाना। सर पे खड़े होने से दूसरा बंदा कॉन्शियस हो जाता है, अल्लाह ताला ने खुद खुद से ही ये काम लिया, हमसे ले लेगा तो क्या बड़ी बात है। मैं कहती हूँ हम ना पहुँचाएं पैगाम, अल्लाह के लिए तो परिंदे ही बहुत है। एक खुद खुद एक पूरी कौम की हिदायत का सबब यहाँ बनता जा रहा है। कहा कि जाओ इनको दे के जाओ और काम करो। पहले दौर में आपने सुना होगा कबूतरों से लोग काम करवाते थे, अल्लाह ने उनको अकल दी हुई है। आज तो मसनूई दुनिया में हम जीते हैं ना, दिल में से मेरा बड़ा चाहता है कि आज से कोई पिछले कोई 200-400 साल पीछे जीते, मिट्टी के घरों में रहते और ना एसी ना हीटर ना ये मुश्किलात होती। सुबह दिल चाहता है उठ के बाहर आ जाओ, और बाकी उड़ने को दिल चाहता है, इतनी खूबसूरती इतनी नेचर, और हम बिस्तरों में दुबके पड़े रहते हैं। तो बहरहाल ये हुआ कि उसको वो ख़त लेके गया, آپ کہیں گے کہ کیسے لے کے جا سکتا ہے، مشکل ہے، اللہ نے عقل دی. فنظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کہ اس پہ وہ کرتے کیا ہیں، کیا رد عمل آتا ہے، اس خط کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اس سے بھی ایک بہت ہی خوبصورت عمل کی بات نکلتی ہے، اور وہ کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ خط جب کسی کو دیا جاتا ہے یا کوئی پیغام دیا جائے تو پھر اس کا جواب بھی لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بات بیچ میں لٹکی بھی نہ پڑی رہے، کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جو کام ادھورے ہوتے ہیں نا یاد رکھیں ہمارے دماغ پہ لٹکے ہوتے ہیں. اگر آپ ذہنی اور دماغی طور پہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں نا تو اپنے پینڈنگ کاموں کو وہاں سے اٹھائیے. یہ جو تھنگس ٹو ڈو بنتی ہے نا، یہ واقعی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سر کے اوپر نا ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ بوجھ ہلکا ہوتا جاتا ہے، جب پوری ہو جائے تو مطمئن ہوتے ہیں. ڈیلینگ جو ہوتی ہے نا، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب وہ ان کو خط دینے گیا تو اسے کہا کہ تھوڑا سا الگ ہو کے بیٹھ جانا. وائے، اس سے ایک بہت ہی پیارا نقطہ ملتا ہے سائڈ وائز، اور وہ کہہ کہ کسی کو آپ دعوت دیں نا، تبلیغ کی بات کریں، دعوت دیں، تو تھوڑا سا پھر سائڈ پہ رہیں، سر پہ ہی نہ سوار ہو جائیں. پھر کیا کہتے ہیں، اچھا بتائیں، مثال ہے کہ فنڈ ریزنگ ہے یا کوئی چندہ جمع کرتا ہے، اب سر پہ کھڑا ہو جائے، چلیں دیں نا، پھر ابھی دیں نا، جلدی کریں نا، پھر دیں نا، پھر میں لے کے ہی جاتا ہوں. نہیں، لوگوں کو ٹائم دیجیے، مہلت دیں. میسج کنوے کیا، سر پہ نہیں سوار ہوئے. دعوت دینے میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن دعوت دینے کے بعد جواب آنے میں انتظار کرنا چاہیے. فنظر، پھر دیکھتے ہیں ماذا یرجعون، وہ کیا کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کیا باتیں اس کے بعد کرتے ہیں. اور یہ نہ کرنا کہ خط پہنچا کر بھاگ آنا، بلکہ وہاں رہنا تاکہ کچھ جواب لے کے آؤ. یہ بھی ایک بڑا پیارا نقطہ ہے. بعض دفعہ ہم دعوت دے دیتے ہیں کہ جی یہاں کوئی پروگرام آ ہو رہا ہے، مثال دے رہی ہوں، ایسی سپوزڈ مثال ہے. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جی آج ایک درس ہو رہا ہے، دس اینڈ دیٹ. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو بتایا نہیں کب ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، جگہ کون سی ہے. وہ کہ ایسی بات تو کرنا اور نہ کرنا ایک برابر، ادھوری باتوں کا کبھی پورا فائدہ نہیں نکلے گا. بعض لوگ کہتے ہو یہ تو بتایا نہیں کہاں، یعنی میں نے کسی کی یہ پریکٹیکلی بات سنی، جوش میں خوب بتا رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، دس 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 دس، ٹرین میں تھی، ان کو انتظار یہ تھا کہ ٹرین نہ چل پڑے اور میں میسیج نہ دے دوں. پوری کلاس کی تعریفیں کر کرا کرو کے جب بیٹھی، میں نے کہا اپنے ان کو بتایا کدھر، کہتی یہ تو بھول ہی گئی، فون نمبر دیا وہ بھی بھول گئی. تو میں نے کہا پھر اللہ ہی اس کو پہنچا دے گا، آپ کے پاس آ جائے گی وہ. تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، پہلے وہ کام دیں. آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو پہ جو ایڈ لوگ دیتے ہیں نا، اس کا ایک بڑا اصول ہے گہرا، کہ فوراً سب سے پہلے، کبھی آپ کو بھی کہیں دینا پڑے نا، سب سے پہلے جلدی سے جا کے اپنا ریفرنس دیں، بیچ میں ایک دو بار فون نمبر بتا دیں، جگہ بتا دیں، ای میل بتا دیں، ویب سائٹ بتائیں، تاکہ کسی بھی لمحے آپ کو کاٹ بھی دیا گیا تو کم از کم میسج تو پہنچ چکا ہو. پھر آگے دیکھتے ہیں، اب خط پہنچ چکا ہے، اب ذرا دوسری طرف سے ہم اینگل دیکھیں گے. قالت، وہ بولی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ملأ وہی ملا سے سرداروں کے لیے آتا ہے، انی القیہ الیہ کتاب کریم، کہنے لگی کہ میری طرف ایک بہت عزت والا خط بھیجا گیا. خط کیا ہے؟ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اگلا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالو علیہ، تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں. واتونی مسلمین، اور چلے آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر. کتنی لائنیں حضرت سلیمان کے خط کی، یعنی آپ دیکھیں تین آیتیں بن رہی ہیں، تین بھی نہیں، آیتیں تو دو ہی بن رہی ہیں، اور شاید سوا یا ڈیڑھ لائن ہے قرآن کی. اور اس کو کہنا چاہیے کہ من من بھر کے سبق ہیں اس ایک خط میں. کتنا ٹو دی پوائنٹ ہے خط. پہلے میں ملکہ بلقیس کے کردار پہ تھوڑی بات کروں، پھر ہم خط نویسی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ اس عورت نے خط دیکھتے ہی کیا کہا، انی القی الیہ کتاب کریم. کیا کہا؟ او درباریو، دیکھو میری طرف بڑا باعزت خط آیا. کیا کہہ سکتی تھی، تمہیں پتہ ہے مجھے کس کی طرف سے خط آیا؟ وہ کنگ سلیمان کی طرف سے آیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں وہ. اس نے پیغام پہ نظر رکھی، پیغام دینے والے پہ نہیں. مروبیت ہو سکتی تھی اس کے دل میں. چلے مثال دیتی ہوں کہ آپ کوئی آ جائے صدر اوباما کی طرف سے خط، کیا کہیں گے دوسروں کو فون کر کے، اوباما کی طرف سے خط آیا ہے، मुझे आया है, अपने हाथ से लिखा है, एड्रेस भी था उस पे मेरा। हम उलझ जाते हैं ना ऊपर की चीजों पे, किसी का एक हाथ का लिखा हुआ कोई ऑटोग्राफ हो, कोई सिग्नेचर्स हो, उसको ही लोग कॉपी करा करा के फ्रेम करा के दीवारों पे लगा लेते हैं। जो शख्सियतों में उलझते हैं ना, वो पैगाम से हट जाते हैं। यहाँ तकाबुल कर लें अब आप फिरौन के और मलका बिल्किस के किरदार में। फिरौन के पास जब मूसा गए तो वो मूसा की ज़ात में खो गया। तू मेरे टुकड़ों पे पला, बच्चा था मेरे घर में आया, और इसने कितनी इज्जत की, किताबुन करीम। मलका सबा कह लें या मलका बिल्किस जो थी, ये अल्लाह के नाम की इज्जत कर रही थी, क्योंकि ख़त शुरू ही ये हो रहा था कि अल्लाह के नाम के साथ। तो हिदायत उनको मिलती है जो मैसेज पे नज़र दें। यानी मिसाल है कि हम सब यहाँ बैठे हैं ना, हम में से जिसको इस काम की सच्चाई का यकीन है ना कि इससे खैर निकल रही है, अल्लाह उसे और बड़ा काम कराएगा। और जो शख्सियात और नामों में खो जाएगा ना, उससे अल्लाह ताला तौफीक छीन लेगा। मसला अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरान पढ़ने की बजाय आप ऐसा करें कि आप अपने इदारे को ज़रा प्रमोट करें, इसके नाम को हाईलाइट करें, लोगों को इससे जोड़ें, नहीं जोड़ें। एक दफ़ा बिल्कुल लाइव मेरे साथ ये पोजीशन हो गई थी। किसी जगह मेरा दर्स है दूसरे मुल्क में, बहुत अच्छी हमारी स्टूडेंट है माशाल्लाह, अभी तक वो साथ काम भी करती हैं और सीख भी रही हैं। वाकई मेरे यादगार दर्सों में से एक दर्स था कि उस बच्ची को अगर कहीं और मौका नहीं मिला, उस एक दर्स को उसका शौक था कि मैंने अपने घर में दर्स कराना है। और जिस मुल्क में वो है वहाँ उनका घर था, वो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन 2-3 फ्लोर का था। आप सोच सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में गली के बाहर से आवाज़ें आने लग जाती हैं ना, माइक पे कोई दर्स हो या अंदर दर्स, इस तरह जब अभी हमारी गाड़ी खड़ी हुई तो हमें माइक की आवाज़ आनी शुरू हुई। अंदर जाके देखा, जिसको कहते हैं ना कि तिल धरने की जगह नहीं, 3 फ्लोर घर के, हर फ्लोर पे 7-8 कंप्यूटर्स के जरिए उसके मियाँ ने पूरे घर में पेलटॉक और कंप्यूटर्स के साथ सेटअप किया हुआ, बाहर भी आवाज़ें, किस्सा मुख्तसर, इंतहाई बेहतरीन दर्स हुआ। एंड पे वो आई, जैसे शेयरिंग के लिए बुलाया जाता है उसको बुलाया, तो बहुत खुश थी, जज्बाती थी, कहने लगी लोगों को कि इस तरह आपने सुना है तो आप प्लीज़ नूरुल कुरान से ज़रूर जुड़िए, देखें आपने खुद देखा है, ये है वो, दिस एंड दैट। मैंने फ़ौरन उसके हाथ से माइक लिया, मेरा ये ऑनलाइन पे भी आ रहा था दर्स, लाइव भी साथ जा, मैंने उसे कहा कि देखिए इस बच्ची से गलती हो गई है, मैं आपकी इसलाह करना चाहती हूँ। और वो क्या है कि इसने कहा है कि आप नूरुल कुरान से जुड़िए, मैं आपसे कहती हूँ कि आप कुरान से जुड़ें, खुद बहुत कुरान का नूर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। फिर वो ज़रा घबराई कि मैंने गलत कह दिया। हम क्यों जोड़ें अपने आप से, इंसानों इदारों ने कुछ नहीं देना। आज अगर हम ये काम ना कर रहे होते, कुरान हमारी ज़िंदगी में ना होता, आप लफ्ज़ नूरुल कुरान को ले लें या आप अपने किसी मसलक को ले लें, फ़िरके को ले लें, किसने हमें बख्शवाना था कल कब्र में? ये देखें कि कुरान ज़िंदगी में आ रहा है कि नहीं, किसी को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मुझे कहीं जाके फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। कितने लोग हैं जो नामों में उलझ के अपने लिए किताब को बंद करा देते हैं, अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो। फिर अगली बात देखिए कि उसने अपने सरदारों को जब पुकारा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त जो है, अब इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, कहने लगी इन्नहु मिन सुलेमान, ये हज़रत सुलेमान ने लिखा था असल में। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये ख़त के शुरू के लफ्ज़ हैं, पहले किसका नाम है? सुलेमान का। फिर बिस्मिल्लाह लिखी है। ख़त लिखने के आदाब में हमें ये चीज़ पता चलती है, नबी सल्लम के खतूत को भी अगर हम रखें, आपको सैंपल में दिखाया भी जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने दावती ख़त लिखे आप भी यही अंदाज़ इख्तियार करते थे कि मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हरकल या इला निजाशी, कि एक बादशाह ने सिर्फ ये पहला जुमला सुन के ख़त फाड़ दिया था कि इस शख्स को अपना नाम मेरे नाम से पहले लिखने की जरूरत हुई। ये शख्सियात और इंसानों में खोने वाले लोगों का अंजाम होता है कि उसने अल्लाह के नबी के ख़त को फाड़ दिया। मदीना में बैठे हुए अल्लाह के नबी तक खबर पहुंच गई कि उसने ख़त फाड़ा है, आपने फरमाया कि अल्लाह इसकी सल्तनत के टुकड़े करेगा। और वो कासिद जो लेके आया था अभी वापस नहीं गया था कि अल्लाह के नबी को वही के ज़रिए से जो बात पता चली और उसको बता दी गई कि रातों रात उसके बेटे ने बाप का तख्ता उल्टा, बाप को कत्ल किया और अब खुद हुक्मरान बन के बैठ गया। अल्लाह के नबी के साथ को टक्कर लेके बच सकता? नहीं बच सकता। तो ख़त लिखने का अदब यह है कि पहले अपना नाम, हम कहाँ लिखते हैं अपना नाम, सारा ख़त 5-6 सफ़ों का पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, फिर कहते हैं आया किससे, दो टोक अपना नाम लिखें। आजकल ईमेल्स का सिलसिला है तो उसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोगों को एड्रेस ही पता चल जाता है फलां का ईमेल है, लेकिन ना भी हो तो अपना नोटपैड बनाएं या जिससे आप ईमेल्स करते हैं अपना ऊपर लिखें, फलां की तरफ से फलां के लिए। ये एक अच्छा अदब है, क्योंकि देखिए जब आपको आखिर तक अगले बंदे को सस्पेंस में रखेंगे तो बात का मकसद ही हल होगा। पहले बता दे मैं कौन हूँ और फिर किसकी तरफ से हूँ। फिर दूसरी बात देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, ये है वो मुकाम कि जिसकी वजह से कुरान पाक में बावजूद इसके कि सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं है फिर भी 114 बार है, क्योंकि सूरत नमल के शुरू में भी है और यहाँ भी आती है। और रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझसे पहले बिस्मिल्लाह हज़रत सुलेमान के अलावा किसी और नबी को नहीं सिखाई गई। यानी ये पूरे ऐसे अल्फाज जो अब हम बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम क्या करें, ख़त लिखें तो फिर बिस्मिल्लाह पूरी लिखें या खैर से 7, 8, 6 ही लिख लें आदाद के साथ। कितनी बिदतें हमने हर चीज़ में चिमेड़ी हुई हैं अपने साथ। सही अमल क्या है? अगर आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट आप किसी को भेज रहे हैं उसको इज्जत से किताबुन करीम समझ के रखा जाएगा तो बिल्कुल लिखें, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिख लें, बिस्मि रब्बी लिख लें, बिस्मिल्लाह लिख लें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको शक पड़ता है कि अगर लिखने से बाद में नीचे गिरेंगे, अखबारों में चीज़ें छपती हैं बाद दफ़ा, तो इसका एक ये भी तरीका बताया गया कि जब आप ख़त लिखें तो ख़ुद उस वक्त लिखने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक आ गया ना कि बा सीन मीम अलिफ इसके सारे अददों को गिनते हैं, कुछ लोग हरूफ की और अदाद की गिनती के कुछ नंबर्स रखते हैं, फिर बा के इतने वज़न उसके इतने, जब सारे जमा किए तो वो 786 बने। सुना मैं कभी देखा लिखा हुआ 786? ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। सिर्फ इज्जत के डर से ना लिखना और बिल्कुल पीछे कर देना, बस लोग सिर्फ इस वजह से कोई अरबी चीज़ घर में नहीं रखते कि बेदबी बड़ी होगी, नीचे गिर जाएगी तो ये होगा। इज्जत के साथ रखें, आपने बुरी नीयत से नहीं लिखा, अगर फिर भी उसके बाद कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, खैर होगी। फिर दूसरी एक और चीज़ इसमें से नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि बाज़ ने इस पे भी बात की कि हज़रत सुलेमान के ये लफ्ज़ तो बता रहे हैं कि अरबिक, इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो क्या हज़रत सुलेमान को अरबी आती थी? वो तो अजमी थे, दूर थे, वो तो बनी इसराइल के थे। तो इसके बारे में जवाब में कुछ चीज़ें लिखी गई। बाज़ कहते हैं कि जो परिंदों की बोलियाँ समझ जाते थे क्यों अरबी नहीं समझते होंगे, लेकिन अरबी में क्यों लिखा? क्योंकि मलका बिल्किस अरब से थी। तो पता क्या चला कि दावत जब दें, जब तबलीग करें, तो जो मधु है ना उसकी ज़ुबान को नज़र में रखें, वो अपनी ज़ुबान में कंफर्टेबल फील करता है। ये एक सिंपल सी बात है, हर बंदे को अपनी ज़ुबान में ही मज़ा आता है, सिर्फ ज़ुबान का मसला बनाकर किसी को पीछे नहीं दीन से कर देना चाहिए। फिर इसी तरह एक और चीज़ क्या है कि अगर कोई बड़ा आदमी अपने छोटे को ख़त लिखे, मिसाल है कि शागिर्द उस्ताद को ख़त लिखता है या औलाद माँ बाप को ख़त लिखती है, तो फिर क्या करे? तो इसके बारे में एक रिवायत आपको सुना देती हूँ। हज़रत अनस का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो कोई इंसान काबिले तआज़ीम नहीं, मगर सहाबा करम जब भी आपको ख़त लिखते तो अपना नाम ही शुरू में लिखा करते थे, और जब अला खिज़रमी का ख़त जो अल्लाह के नबी के नाम मारूफ है वो आया तो वो इस पर शाहिद है। यानी इसमें कोई हरज की बात नहीं, आप अपना नाम पहले लिख सकते हैं। एक और भी सुन्नत है ख़त के बारे में कि किसी का ख़त आए तो उसका जवाब देना चाहिए, ये सुन्नत है। ये बहुत बैड एटीट्यूड होता है कि आप किसी को रिप्लाई ना करें। अच्छा, बाज़ लोग आजकल चूंकि ईमेल्स में ज़्यादा ख़त और किताबत होती है ना, तो उसमें भी बड़ा अग्रेसिव रवैया अख्तियार करते हैं, एक लफ्ज़ नहीं लिखते और बस ईमेल फॉरवर्ड कर दी, या अगर कोई मिसाल है काम दिया वह वो काम दिया और भेज दिया कि पकड़ें ये हमने कर दिया काम। दो चार छोटे से खूबसूरत से जुमले होने चाहिए जिससे आपके जज्बात की अकासी हो। यकीन करें हम लोग इंग्लिश में ईमेल्स लिखते हैं ना, उसको भी जान के बीच में उर्दू के लफ्ज़ या कभी जी लगा लेना, कभी फलां करते हैं ताकि अगले को हमारे जज्बात पहुँचें। और अगर हम बिल्कुल टू दी पॉइंट यू यू करके बात करेंगे ना, यू टोल्ड दिस, यू डिड यू दिस, तो मुझे तो यू तू लगता है, तू यू तू। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ इतनी दफ़ा हुई है कि ऑनलाइन पे जितने भी साथी हैं जो भी, वो कभी भी ईमेल्स भी लिखें, पीएम्स भी लिखते हैं तो वो यू नहीं लिखते। मैंने खुद नहीं कभी अपने उस्तादों को लिखा, आप लिखती हूँ उसकी पूरा जुमला इंग्लिश में, लेकिन यू को मैं आप करती हूँ, क्योंकि ये बड़ी बदतमीज़ी लगती है कि हम इतने मजहूल अंदाज में बड़ों से बात करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फिर हमें अल्लाह की नज़रों में भी और बंदों की नज़रों में भी अच्छा बना देती हैं। फिर इसी तरह अब एक और इसमें जो मसला आता है कि एक गैर मुस्लिम को, काफिर थी ना वो औरत, तो हजरत सुलेमान उसको आयतें लिख के दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी तहरीर जिसमें कोई कुरानी आयत लिखी हो किसी गैर मुस्लिम काफिर मुशरिक को दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। अल्लाह के नबी तो वो आयत लिख के निजाशी को भेज रहे थे कि या अहलल किताब तालु इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, कुरान की आयत थी, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर इन चीज़ों को अगर हमने इतना ज़्यादा पाकी पलीदी का रख लिया तो फिर तो दावत दे ही नहीं सकते। ठीक है, आप उसको उसकी ज़ुबान में भी दें, लेकिन जो अरबी ज़ुबान का असर है वो तो उसी में होगा। फिर एक इस ख़त से जो बड़ी खूबसूरत बात पता चल रही है और सुन्नत से भी, कि ख़त मुख्तसर जामे बलीग और मुअस्सर अंदाज में होना चाहिए। चंद सत्रों में सारी बातें लिख दी, ये बलागत कहलाती है बात। इससे आपकी शान शौकत दिखती है। अब यहाँ थोड़ी सी बात ये भी कर लेती हूँ, और वो क्या कि हज़रत सुलेमान दावत दे रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बरक्स अब फिर चलिए पीछे मूसा और फिरौन के किस्से में। फिरौन के पास मूसा जा रहे थे और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं दोनों को, कूला लहू कौलन लईना, मूसा नरम बात करना, प्यार से तबलीग करना। हज़रत सुलेमान के अंदाज में तो कोई प्यार नहीं दिख रहा, कोई नरमी नहीं दिख रही, इसकी क्या वजह है? पहली बात यह कि हज़रत मूसा तो बेचारे बकौल फिरौन के मेरे टुकड़ों पे पले हुए हैं, उनके हाथों से कत्ल हो चुका था, तो अब अगर आप वो अखड़ बात करते तो फिरौन ने सुननी थी। ये अलग बात है कि मर्द नाजा पे कलाम दिल फरेब बेअसर, नरमियाँ भी उसके काम ना आई, स्टेटस का फ़र्क है। इसके बरक्स सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, तो हज़रत सुलेमान ने अपनी इज्जत बताई। इससे पता चलता है कि एक दीनदार, दिल में तकब्बुर ना हो, अपने आप को कुछ ना समझे, लेकिन अपना प्रोटोकॉल इसलिए कि दीन की इज्जत हो दिखाए, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, दलील मिल गई है कि मर्द भी औरत को तबलीग कर सकता है। और आप देखें कि ये पीछे जो अलैहिम की बातें थी, तो इससे एक साइड का नुक्ता मिलता है कि इनको डायरेक्ट औरत और मर्द की कन्वर्सेशंस नहीं थी। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक औरत मर्द को दावत के लिए नेकी के काम में, अच्छे कामों में बात करे, कैसे करे? हमेशा याद रखिए कि इनडायरेक्ट। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि जैसे हमारे इस पूरे सिलसिले में एक मेल टीचर भी हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। अब ज़ाहिर है कि मैनेजमेंट के साथ हमारा जब काम होता है तो हमें उनसे भी मीटिंग रखनी पड़ती है। आज तक कभी भी मैंने अकेले में उनसे मीटिंग नहीं की, हालांकि कर सकते हैं, रूम ही है ना, क्या हो रहा है, वो भी हों, आज तक नहीं की, ना मैं कर सकती हूँ और ना मेरे से शायद होगी। हमेशा बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर्स दो तीन लोग होते हैं, कई दफ़ा मीटिंग इसलिए भी डिले हो जाती है कि बीच में कोई बंदा नहीं है। डायरेक्टली पीएम नहीं किया, अगर कभी किसी ने कोई लिखा भी हुआ है, कोई सवाल पूछना है, वो तो पता ही नहीं चलता कौन है, लेकिन जस्ट दो तीन नुक्तों में। और हमारी अक्सर मीटिंग जिसमें कोई मर्द हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ मौजूद होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑन साइट हो, क्योंकि ये चीज़ें असल दीन दिखाती है ना। तो इधर भी आप देखिए कि बीच में उल्किया इलैहिम में भी ये बात आपको अंदाज़ा मिल रहा है कि दावत दी हज़रत सुलेमान ने एक औरत को, आज भी एक औरत दावत दे सकती है, मतलब जैसे वेस्ट में रहते वैसे मौके आते हैं, क्योंकि यहाँ तो मर्द की तरफ से औरत को जा रहा है, तो कभी औरत का भी दिल चाहे कि क्या अब हम अपने कजन्स को या अपने मतलब दूसरे मर्दों को जो भी हमारे इर्द गिर्द रहते थे दे सकते हैं। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे आपकी लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं। और आप देखिए क्या कहा अल्लाह ताला अलैया, मुझ पर मेरे मामले में तकब्बुर ना करो। ये मुसलमान बादशाह थे, इन्होंने अपनी तरफ ये बात की कि मेरे ऊपर चढ़ाई ना करो, वातूनी मुस्लिमीन, दोनों को आप जोड़ के देखें तो बनता क्या है कि नंबर एक तो उसको इस्लाम की दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमती तौर पर उसको अपने ऊपर गालिब आने से भी रोक रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, अल्लाह हमें भी वाकई इतनी नबी तुली, इतनी हिकमत वाली बात करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक अब एक तस्वीर का रुख दिखा है, अब आगे खत जा रहा है, कैसे होगा आप भी इंतज़ार करें, हम तिलावत सुनते हैं।
قال سننظر وصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم